ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय एक श्लोक संख्या 38 की आवृत्ति करेंगे। वैसे श्लोक 31 से 38 तक आज लेना है, पर लास्ट श्लोक 38 है इसलिए उसकी आवृत्ति करेंगे। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सुत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सुत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सुत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। तो यहाँ प्रकरण जो चल रहा है शीर्षक है मनु की पुत्रियों की वंशावली। हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजा लोक विश्रुता भवितारोंग भद्रम ते विश्रप्शन्ति च ते यशः। आपने पिछले दिनों में सुना कि अत्रि और अनसूया इनके इन्होंने बहुत तपस्या की। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रि ऋषि चित्रकूट में, आप कभी लोग गए हों तो चित्रकूट में इनका आश्रम है अत्रि और अनसुईया। तो इनके ब्रह्मा जी ने बोला, अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इन्हों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम संतान उत्पत्ति करो। तो इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन तपस्या किसकी की? जनार्दन, जगदीश्वर है। शरणम तम प्रपद्ये हम यह एव जगदीश्वर है। ये जगदीश्वर, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। पर मजे की बात यह है कि जगदीश्वर कौन है ये अत्रि ऋषि जी को मालूम नहीं था। ये हम लोगों पर प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग समझते हैं कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है, जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वे भगवान हैं। लेकिन अत्रि ऋषि महान योगी थे, इसलिए परमात्मा स्वरूप की वे तपस्या कर रहे थे। तो परमात्मा स्वरूप हमारे क्षीरोदक साई विष्णु, पर क्षीरोदक साई विष्णु का स्वरूप कैसा है, उनका नाम क्या है, ये अत्रि जी को मालूम नहीं था। तो इसलिए जब उन्होंने तपस्या की तो तीनों देवता आ गए, क्योंकि जब परमात्मा स्वरूप की आप उपासना करोगे, योगी लोग परमात्मा स्वरूप की उपासना करते हैं, तो परमात्मा स्वरूप की उपासना करने से परमात्मा के जो अंश हैं, अंश कौन है? क्षीरोदक साई विष्णु के, जैसे ब्रह्मा जी और शिव, तो वे भी साथ में आते हैं। तो ये तीनों प्रकट हुए। प्रकट होकर के वे बोलते हैं कि हमारे तीनों के अंश से आपके पुत्र होंगे। अथास्म दंश भूतानाम अंश भूता, हमारे तीनों के अंश से आपके तीन पुत्र होंगे। और इस प्रकार एवं कामवरम दत्वा, इच्छित वर को प्रदान करने के बाद प्रतिजग्मु सुरेश्वरा, तीनों श्रेष्ठ जो देवता थे वे अपने अपने धाम को चले गए, तब सम्यक दंपतियों हो, दंपति ने उनकी बड़ी अच्छे से परिक्रमा की, प्रणाम किया उनको, सभाजितास्तयो हो, और प्रणाम करके तब उन्होंने देखा कि उनके तीन पुत्र हुए हैं। जब वे चले गए, उनके देखते देखते वे चले गए, जब चले गए तब उनके तीन पुत्र हुए। तीन पुत्रों के नाम दिए गए हैं कि सोमो भूत ब्रह्मणों से न दत्तो विष्णुस्तु योगवित दुर्वासा शंकर शांशो निबोधनांगी रसह प्रजा। तीन पुत्र हुए, एक तो सोम। सोम किसके अंश थे? बोले सोम थे नहीं, सोम थे ब्रह्मा जी के अंश, और सोमो भूत ब्रह्मणों से न ब्रह्मा जी, ब्रह्मणा के अंश से, ब्रह्मा जी के अंश से सोम उत्पन्न हुए, और दत्तो दत्तात्रेय जी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, और दुर्वासा जी शंकर शांश शंकर के अंश उत्पन्न हुए। तो अब वे कहते हैं कि निबोधनांगी रस प्रजा, अब अंगिरस की प्रजा, प्रजा माने संतान, अंगिरस के संतान के बारे में आप मुझसे सुनिए। तो इसके पहले हम ये देखते हैं कि ये एक कौन थी, ये जो कन्याएं थी अनुसुया वगैरह, ये कौन थी? कर्दम जी की तृतीय स्कंध में कपिल भगवान की जो शिक्षाएं आती हैं, तृतीय स्कंध 24वां अध्याय में, तो उसमें 22वां और 23वां श्लोक है कि मरीचिये कन्याम प्रादाद अनसुयाम अथात त्रये। नौ कन्याएं थी कर्दम जी के और अनसुया के, कर्दम जी के और देहूति के नौ कन्याएं थी। तो नौ कन्या कौन कौन थी जिनका ब्याह किया उन्होंने? क्योंकि कर्दम जी तो जैसे ही न कन्या हुई तो वे तो चले, संसार छोड़ करके जा रहे हैं, तो संसार छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वो प्रार्थना किया कि आप इनका ब्याह करके जाओ, मैं अकेली इस पूरे घर में, बड़ा विशाल विमान था, उसकी कथा हुई है लास्ट टाइम यहाँ पे, तो कैसे मैं इनके ब्याह वगैरह करूंगी, कैसे वर ढूंढने जाऊंगी, तो आप इनका वर ढूंढ करके जाइए। तो उन्होंने वर ढूंढने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी आए अपने सात नौ पुत्रों को लेकर के, ब्रह्मा जी वहां पर आए। तो उन नौ पुत्रों में ही ये अत्रि ऋषि एक थे। तो किस किस के साथ किस किस का ब्याह हुआ वह इस श्लोक में है कि मरीचि एक कन्याम प्रादाद, मरीचि ऋषि को अनसुया अथ अत्रये, मरीचि ऋषि को कन्या दी गई कला, कलाम प्रादाद कला दी गई, और अनसुया दी गई अत्रि ऋषि को, जिसकी कथा इन श्लोकों में चल रही है। और श्रद्धाम अंगिरये यच्छत, और इसके बाद का जो ये श्लोक में 33वें श्लोक में आया कि निबोधांगी रस प्रजा अंगिरस, अंगिरस माने बृहस्पति जी को श्रद्धा दी गई, और पुलस्त्याय हविर्भुवम, ये भी आएगा, तीन ऋषि का प्रकरण इसमें आएगा अभी आज के अध्याय में। तो पुलस्त्याय पुलस्त जी को हविर्भू दी गई, और पुलहाय पुलहाय तक आएगा, पुलहाय गतिम युक्ताम पुलहाय को गति दी गई, और कृतवे से क्रियाम सतीम क्रतु महाराज को और क्रिया दी गई, और ख्याति भगवे भृगु महाराज को ख्याति, भृगु महाराज जो भगवान के छाते पे लात मारे थे वे भृगु महाराज, उनको ख्याति दी गई, और वशिष्ठाच अरुंधतिम वशिष्ठ जी को अरुंधति दी गई थी। तो यहां पे जो ये तीन पुत्र हुए हैं अत्रि ऋषि के, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में कहेंगे कि दत्तात्रेय जी ये छठे पुरुष अवतार हैं, जो हमारे भागवत में प्रथम स्कंद में अवतारों की गिनती की गई है 24 अवतार, उसमें ये छठे अवतार हैं दत्तात्रेय जी। और ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। तो उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की थी। ये इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में तो यही है कि अत्रि जी ने प्रार्थना की, अत्रि जी ने तपस्या की, लेकिन यहां ब्रह्मांड पुराण में यह है कि अनसुया ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको यह वर दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र रूप में आए, ये उन्होंने मांगा। तब दत्तात्रेय जी, ये सम्मिलित अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इन्होंने अलर्क, प्रह्लाद, यहू, यदु, है इनको विशेष रूप से उपदेश दिया दत्तात्रेय जी ने। ये दत्तात्रेय जी परम योगी थे। फिर इसके बाद दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि ये शंकर जी के अवतार हैं। इनका श्रीमद् भागवतम में और महाभारत में भी उल्लेख है। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आए। दुर्योधन ने बड़े अच्छे से उनका सत्कार किया, खूब रहने का। दुर्वासा ऋषि हमेशा अपने 10,000 ऋषियों के साथ चलते हैं, तो सबका रहने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया, प्रसाद का और भी सब किया। तो उससे दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। तो दुर्योधन के मन में कपट था, वो सोचा कि मैं इसको युधिष्ठिर के पास भेज दूं तो युधिष्ठिर तो अभी वन में है, तो इनके 10,000 शिष्यों की वो सेवा नहीं कर पाएंगे, कोई साधन ही नहीं है, कहां से करेंगे, तो इसलिए उनके पास इनको भेज दो, तो सेवा नहीं कर पाएंगे तो ये श्राप दे देंगे उनको, तो झंझट खत्म। तो बोले आप जैसे मेरा आतिथ्य स्वीकार किए हैं, आप जाइए वन में, मेरा भाई युधिष्ठिर है उसको भी आप अपना आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर दीजिए। तो गए दुर्वासा ऋषि, जब गए तो 10,000 शिष्य साथ में थे, तो युधिष्ठिर महाराज को बोले कि हम आज आपका आतिथ्य ग्रहण करना चाहते हैं, आप हमको प्रसाद खिलाइए। तो युधिष्ठिर महाराज बोल कहते हैं कि ठीक है, बड़ा हमारा सौभाग्य है आप आए हैं, आप ऐसा करिए पास में नदी है, स्नान करके आइए, हम आपको ये प्रसाद तैयार करते हैं। चले गए वो स्नान करने के लिए। अब इधर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी बड़ी चिंता में कि कैसे इनका बंदोबस्त किया जाए। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जब तक द्रौपदी नहीं प्रसाद ले लेती थी तो उस अक्षय पात्र के कारण वह चाहे जितने लोगों को प्रसाद खिला सकती थी, लेकिन ये इस समय आए जब द्रौपदी प्रसाद खा चुकी थी और साफ सुफ करके उसको रख दिया था, इसलिए अब क्या व्यवस्था की जाए। तो दोनों ने कृष्ण को याद किया, जैसे ही कृष्ण को याद किया इमीडिएटली कृष्ण उपस्थित हो गए, बोले प्रभु ये समस्या है हमारी। तो बोले वो अक्षय पात्र कहाँ है, बोले उसको मैंने साफ करके रख दिया है। बोले तुम लाओ तो सही, उसमें कुछ न कुछ लगा होगा, देख लेता हूं। तो जैसे लाए तो एक शाख का पत्ता उसमें लगा हुआ था, तो भगवान उस जैसे शाख का पत्ता को खाए तो ये तो 10,000 क्या पूरा ब्रह्मांड का पेट भर गया उससे। तो इधर भगवान इस शाख के पत्ता को खाए और उधर जो 10,000 शिष्य और दुर्वासा ऋषि जो स्नान कर रहे हैं सबका पेट भर गया अचानक और उनको डकारें आने लग गई। तो वे सोचे कि अरे हमने आतिथ्य के लिए कहा युधिष्ठिर को, वो बेचारा प्रसाद बना रहा है, अब यदि हम नहीं जाएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, ये अच्छी स्थिति नहीं होगी हमारी, तो क्या करें। तो बोले यहीं से चल, उसके पास जाओ ही नहीं, चल लो। तो सब लोग चले गए। इधर कृष्ण ने यदि अपना भीम को भेजा कि जाओ उन सब ऋषियों को लेकर के आ जाओ इधर। तो जैसे ही भीम गए तो वहां तो कोई नहीं था, सब चले गए थे। तो ये है इस प्रकार के दुर्वासा ऋषि। दूसरी कथा है दुर्वासा ऋषियों की, ऋषि की, अम्बरीश महाराज के साथ। अम्बरीश महाराज बड़े परम भक्त, समस्त इंद्रियां सवे मनो कृष्ण प्रदार रविंदयो, सब इंद्रियां उनकी कृष्ण की भक्ति में लगी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, ये गए दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास कि हम प्रसाद लेना चाहते हैं आपके पास। तो वही बात उन्होंने कहा कि ठीक है आप स्नान करके आइए नदी में और मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो उस दिन द्वादशी थी, एकादशी का पालना करना था उनको। तो गए तो यही वृंदावन की कथा है, वृंदावन में ये कथा घटी थी। तो जब ही मैं स्नान करने के लिए वे गए दुर्वासा ऋषि, तो गए तो वहां पे उनको समाधि लग गई दुर्वासा जी को, तो आने में विलंब होने लगा। तो जब विलंब होने लगा तो यहां पे पालना तोड़ने का, पालना करने का, एकादशी का व्रत तोड़ने का जो टाइम था वो बीता जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने सब वहां पे कई विद्वान लोग थे, ऋषि लोग थे, उनसे पूछा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो थोड़ा सा पानी पी लो, इससे ये हो जाएगा कि ठीक है, वैसे पानी पीने से व्रत का पालना नहीं होता है लेकिन तुम्हारा हो जाएगा, तुम पानी पी लो। तो थोड़ा सा पानी उन्होंने पी लिया, मतलब अन्न तो खाया नहीं। तो दुर्वासा ऋषि के लिए जो वेट कर रहे हैं वह भी बात हो गई और यहां भी ये भी हो जाएगा, पालना भी हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने पानी पिया थोड़ा सा, तो दुर्वासा ऋषि योग भाव से, ये योगी थे दुर्वासा जी, उनको पता लग गया किसने पानी पी लिया है, पालना कर लिया है। तो आए बड़े क्रोधित, बड़े क्रोधी हैं ये, क्योंकि शिव के अवतार है ना, बड़े क्रोधी। तो आ करके उन्होंने और एक राक्षसी उत्पन्न किया। तो वह राक्षसी जैसे इसको अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, तो भगवान विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र इमीडिएटली वहां पे आ गया और वह उस राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा जी के पीछे वह हो गया मारने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि जी चले भागे, शिवलोक गए कोई हेल्प नहीं मिली, ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास कोई हेल्प नहीं मिली। तो भगवान विष्णु के पास वे गए कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके भक्त ने मेरा इस प्रकार ये सुदर्शन चक्र पीछे लगाया है। तो भगवान बोलते हैं भाई देखो भक्तों के बीच में मैं नहीं आता हूं, तुमने मेरे भक्त के चरण में अपराध किया है, तो ये तो तभी संपन्न हो सकता है जब तुम वापस वहीं पे जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे क्षमा मांगो। तो आ गए, आकर के सीधे चरण पकड़े दुर्वासा ऋषि जी। तुम्हें बड़े संकोच में अम्बरीश महाराज, अरे इतना बड़ा सन्यासी और ये क्या कर रहा, दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो वे उठे, उठ करके उठाए और उनको सुदर्शन चक्र की उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप शांत हो जाइए, इनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध मेरा ही है, मैंने पानी पी लिया था, तो आप शांत हो जाइए। तो वे शांत हो गया और तब दुर्वासा ऋषि चले गए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखे हैं कि किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा आदमी होए वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति तो नष्ट होती ही है। पर इसके अलावा यदि कृष्ण भी चाहें कि मैं उसका क्षमादान दे दूं, तो बोले नहीं हो सकता है, जब तक भक्त वापस में नहीं आता क्षमादान नहीं होता है। तो ये दुर्वासा। अभी सोम, सोम ये सोमवंश का नाम आपने सुना है, जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। सोमवंश में यदुवंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो सोमवंश हैं ये अति पावन, बहुत पवित्र वंश हैं, सब वंशों में ये पवित्र वंश है, क्योंकि ये इस वंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है। पर इन्हीं सोम की कथा कुछ भागवत में अटपटी सी है, ये कथा बस जरा सुनिए। सोम के पुत्र हुए थे एल पुरुरुआ, बड़ा उल्लेख है इस सोमवंश में। ये एल बड़े अच्छे राजा हुए थे। तो अत्रि के हर्षाश्रु से, अत्रि से अनसुया से जो सोम उत्पन्न हुआ वो हर्ष के आंसुओं से उत्पन्न हुआ, कुछ स्त्री संग नहीं किया उन्होंने, हर्ष के आंसुओं से उनका गर्भ ठहर गया था और ये सोम उत्पन्न हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कहते हैं कि दग्ध आनंदाश्रुभ्य अत एवा मृतमय है। यह दग्ध का अर्थ है कि आनंद के आंसुओं से और इनका जन्म हुआ। तो गर्भ से तीन पुत्र हुए, जैसा अभी बताया, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। तो तीनों लोगों को सोम ने जीत लिया, ये देवता थे, तीनों को जीत लिया। जीतने के बाद राजसूय नामक महान यज्ञ किया इन्होंने और इतना गर्व आ गया उनको कि उन्होंने जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनकी ही पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बार बार अनुरोध किया कि ये तुम्हारे लायक शोभा नहीं है काम, तुम वापस लौटा दो, पर उसने नहीं लौटाया। तो फलस्वरूप देवताओं और असुरों के बीच में महान युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो बृहस्पति जी के और प्रतिद्वंदी शुक्र तो उन्होंने पक्ष लिया असुरों का। तो असुर सोम को उन्होंने कहा कि देखो, सब देवता तुम्हारे अगेंस्ट में हो गए हैं, तो तुम एक काम करो, हम तुम्हारी पूरी जितनी हमारी असुर सेना है तुम्हारे साथ में कर देते हैं, तुम उनसे लड़ाई करो। तो वह असुर सेना के साथ सोम मान गया और बड़ा भयंकर भारी युद्ध हुआ। तो सभी देवता बृहस्पति जी के पक्ष में आ गए। तो बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण बहुत सारे देवताओं का भी विनाश हुआ, असुरों का भी विनाश हुआ। तब अंगिरा जी, जो बृहस्पति जी के पिता हैं, ये सारी घटना ब्रह्मा जी को बताई कि इस प्रकार सोम ने बृहस्पति की पत्नी को चुरा लिया है। तो ब्रह्मा जी गए सोम के पास और जाकर के उसको खूब डांटा कि ये तुम क्या काम कर रहा है। तो तारा को वापस बृहस्पति जी को दिलवा दिया। जब बृहस्पति जी को दिलवाया तब बृहस्पति जी बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुम गर्भवती हो, वो गर्भवती हो गई थी, तुम गर्भवती हो, अरे स्त्री का तो कर्तव्य है अपने पति से ही गर्भ को ठहरावे, पर तुमने पर पुरुष से गर्भ को ठहराया है, ये अच्छा काम नहीं है, तुम इस गर्भ को आज ही संतान उत्पन्न कर दो, आज ही संतान उत्पन्न करो। वह बड़ी डर गई कि जैसे संतान उत्पन्न करूंगा ये मुझे दंड देंगे और मुझे मार देंगे। पर वे बोलते हैं कि मैं दंड नहीं दूंगा, पर संतान उत्पन्न तुम आज ही करो। तो बृहस्पति का उद्देश्य आदेश पाकर के वह बड़ी लज्जित हुई तारा और एक बच्चे को जन्म दिया। तो वह बच्चा अत्यंत सुंदर और बड़ा बुद्धिमान था, सोने के समान चमक रहा था। उसका नाम था, उनका इन्होंने नाम रखा बुध। जब वह बच्चा हुआ तो दोनों में फिर झगड़ा हो गया। सोम बोलता है मेरा पुत्र है तो मुझको दो, बृहस्पति बोलते हैं मेरा पुत्र है क्योंकि मेरी पत्नी से हुआ है तो मुझको दो। तो दोनों में फिर झगड़ा हुआ। तब उस पुत्र ने अपनी मां को कहा कि तुम बताओ मैं किसका पुत्र हूं। तो मां तो बड़ी लज्जित हुई, वह बिल्कुल बोल नहीं सकी। तो ब्रह्मा जी एकांत में उसको ले गए तारा को और ले जाकर के पूछे कि तुम किसका ये पुत्र है बताओ। तब वो धीरे से बोली सोम, सोम का ये पुत्र है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वो बालक सोम को दे दिया और सोम उस पुत्र के कारण, नक्षत्रों के राजा थे सोम, वे अत्यंत हर्षित हुए। तो यह है सोम की कथा। वैसे सोमवंश को परीक्षित महाराज ने भी दशम स्कंद के पहले अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में बहुत सराहा है सोमवंश को, क्योंकि जब भगवान की कथा नवें अध्याय में केवल एक श्लोक में कह के समाप्त कर दिया, केवल सोमवंश की और सूर्यवंश की कथाएं चालू की, तब वे परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरा संतोष नहीं हुआ। सोमवंश बहुत पवित्र वंश है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। आगे का श्लोक लेंगे। अब निवोदांगी रस प्रजा, बृहस्पति के बारे में कथा हो गई, वैसे बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित हैं और बृहस्पति नाम से ये विख्यात हैं। ये विष्णुदेव के देव ने जब देह त्याग किया था उस समय स्वर्ग से उनका प्रवचन सुनने के लिए, कृष्ण के बारे में प्रवचन सुनने के लिए आए थे। तो कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनका अंशावतार है और शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति जी को उन्होंने ललकारा था। उनके पुत्र कवच ने बृहस्पति जी के सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अज्ञास्त्र प्रदान किया था और उन्हें अपने पति पत्नी चंद्रमासी से, जो एक विख्यात नक्षत्र है, अग्नि के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। बृहस्पति जी आंतरिक में विचरण कर सकते हैं, उनको कोई वायुयान की कोई भी जरूरत नहीं है, वे इंद्रलोक में भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं। तो स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए इन्होंने ही सलाह दी थी कि इस समय तुम असुरों से युद्ध करो, तुम जीत जाओगे। एक बार जब बृहस्पति जी इंद्र जब उर्वशी का नृत्य देख रहे थे तो उस सभा में बृहस्पति जी आए तो उनका सम्मान नहीं किया इंद्र ने, तो इनको श्राप दे दिया बृहस्पति जी ने कि जा तू सुअर बन जा। तो इंद्र कई वर्षों तक सुअर योनि में रहे और मजे की बात यह है कि वे ब्रह्मा जी उनको लेने आए, अरे इंद्र पद खाली पड़ा है, चलो अब तुम क्यों नहीं चल रहे हो। पर वे बोले नहीं नहीं मैं तो यहीं ठीक हूं। तो जिस योनि में जो जीव जाता है वही योनि उसको अच्छी लगती है, चाहे सुअर की योनि है और चाहे इंद्र की योनि है। तो माया की, प्रभुपाद जी कहते हैं इसके तात्पर्य में कि माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुक्र भी अपने घर के वैभव के बदले स्वर्ग नहीं चाहता है। ये बृहस्पति जी विभिन्न लोकवासियों को धर्मोपदेशक देते थे और उद्धव जी इन्हीं के स्वर्ग में जाकर के इन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान शिव ने भी इनके पिताजी से ही, अंगिरा जी से ही ज्ञान प्राप्त किया था। अब आगे का श्लोक लेंगे। श्रद्धा त्वंगिरस पत्नी चतस्रो सूत कन्या का सिनी वाली कुहु राका चतुर्थ्यानुमति तथा। तो अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम है सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति। तत्पुत्राव परावास्ताम ख्यातो स्वारो चिशेन्त्रे उदत्यो भगवान साक्षात ब्रह्मेष्ठश्च बृहस्पति। और इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त इनके 2 पुत्र हुए, बृहस्पति और एक हुए उतथ्य। तो बृहस्पति जी बड़े विद्वान थे जिनकी कथा भी आपको सुनाई। अभी पुलस्त्योदन पत्न्याम अगस्त्यम च हवीर भुवि सोन्य जन्मनि दाग्नि विश्रशा वाशश्च महातपा। पुलस्त्य जी का हवीरभू से ब्याह किया गया था जो मैंने पहले बताया, तो उनसे अगस्त ऋषि उत्पन्न हुए और उनके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तस्य यक्षपति देव कुबेर त्रिडबिज बिड़ा सुत है रावण कुंभकर्णश्च तथा श्याम विभीषण। तो उससे विश्रवा से इनके 2 पत्नियां थी विश्रवा के, जिसमें प्रथम पत्नी इडबिडा थी। तो इडबिडा से समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी से जिसका नाम था केशिनी, उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो अब इन 4 के बारे में थोड़ा कहेंगे। कुबेर जी ये ट्रेजरर हैं देवताओं के, धन की संभाल और अकाउंट्स ये रखते हैं। ये हमेशा स्त्रियों से घिरे रहते हैं लेकिन बड़े विरक्त, स्त्रियों में बिल्कुल आसक्त नहीं, एकदम अनासक्त। ये परम भक्त हैं कृष्ण के और ध्रुव महाराज को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। जब ध्रुव महाराज के छोटे भाई उत्तम एक शिकार खेलने के लिए एक बार गया तो वह यक्षों के राज्य में चला गया हिमालय के आगे, तो वहां पर इसको यक्षों ने मार दिया। यक्ष लोग ये कुबेर जी के सब प्रजा, तो मार दिया तो ध्रुव महाराज बड़े क्रोधित हुए। वे गए पूरी सेना लेकर के और जाकर के सब यक्षों को मारने लगे। एक बार तो यक्षों ने इन पर आक्रमण किया तो ये हारने लगे, फिर ये तेज हो गए तो यक्ष सब भागने लगे। तो इनके पितामह आए, आकर के बोले कि अरे तू क्यों सबका विनाश कर रहा है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तू भक्त है कृष्ण का, तुम ऐसा मत करो। तब फिर उन्होंने वो विनाश को रोक दिया। तो रोक करके कुबेर जी उस समय आए उधर, आकर के उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद क्या दिया, बोले ध्रुव महाराज ने मांगा कि मुझे निरंतर अनवरत केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए, तो उन्होंने यह आशीर्वाद दिया। इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यह प्रश्न उठाए हैं कि ध्रुव महाराज इतने बड़े भक्त, इन्होंने एक देवता से कृष्ण भक्ति का वरदान क्यों मांगा। बोले देवताओं की पूजा कृष्ण भक्ति के लिए कर सकते हैं, पर आशीर्वाद कृष्ण भक्ति के लिए देवताओं से क्यों मांगा। तो भोपाल जी वहीं स्वयं आंसर भी देते हैं कि ये अलाउड है, देवताओं की उपासना यदि कृष्ण भक्ति के लिए की जाए तो अलाउड है। बोले जैसे गोपियां, गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया तो किसके लिए किया, बोले पति रूप में हमको कृष्ण प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने व्रत किया था, तो यह अलाउड है। यदि हम किसी भी देवता की उपासना करें, जैसे शिवरात्रि आई तो हमारे यहां नॉर्मली ये होता है कि भाई शिवजी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई शिवजी के मंदिर में जाए, कई लोग गए थे हमारे, जाकर के क्या ये मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति आप प्रदान करें, क्योंकि शिवजी परम वैष्णव, तो उनसे जो वरदान प्राप्त होगा तो हमें कृष्ण भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार ये कुबेर जी बड़े परम संत। अब विभीषण जी के बारे में कथा है। विभीषण जी एक बार भगवान के पास गए, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था लंका में, तो उस समय विभीषण जी आ रहे हैं, क्योंकि रावण को उन्होंने कुछ एडवाइस किया था, तो उस एडवाइस के कारण रावण ने विभीषण जी को लात मारी, कह रहे जो शिक्षा तू मेरे को दे रहा है जा तू अपने दोस्त को जाकर के दे, मतलब राम को जाकर के दे। तो विभीषण जी आए राम के पास में, आए तो दूर से सब बंदरों ने देखा, सुग्रीव जी ने देखा कि विभीषण आ रहा है, तो बोले राम से कि विभीषण आ रहा है, रावण का भाई है ये, जरूर हमारा कोई भेद लेने के लिए आ रहा है, जासूसी करने के लिए आ रहा है, तो आप बिल्कुल उसको गले मत लगाना। तो भगवान बोलते हैं देखो भाई मेरा एक व्रत है, व्रत माने प्रतिज्ञा, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि यदि कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो, तो यदि वह मेरी शरण लेने के लिए आ रहा है तो मैं उसको रक्षा करूंगा। तो आया विभीषण, आए तो भगवान को प्रणाम किया, तो प्रणाम करते ही मतलब वह भगवान के शरण में आया। तो भगवान कहते हैं कहूं लंकेश कुशल कुठाहर, कहूं लंकेश सहित पहाड़ा कुशल कुटाहर वास तुम्हारा। ये लंकेश संबोधन किया, लंका के राजा, लंका के ईश संबोधन किया कि हे लंकेश तुम्हारा परिवार ठीक से है, तुम्हारा रहना सहना सब ठीक से है। तो जब लंकेश बोला तो सब बंदर और सुग्रीव घबरा गए, अरे लंका का राजा रावण है और इसको आज ही इन्होंने लंका का राजा बना दिया। तो भगवान राम वीर न भाषते, वे झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोला है तो होके रहेगा। तब वे पूछते हैं भगवान से कि प्रभु आपने इसको लंका का राजा बना दिया, पर यदि रावण समझ लो आ जाए आपके पास में शरण लेने के लिए कि चलो मैं लड़ाई नहीं करता हूं मैं आपके शरण लेता हूं, तो आप उसको क्या दोगे? अब लंका तो दे दिया विभीषण को, आप उसको क्या दोगे? बोले मैं मेरी अयोध्या दे दूंगा उसको। बोले अयोध्या तो आपने भरत जी को दे दिए, तो भरत जी आएंगे तो क्या दोगे? बोले उसको मैं मेरा धाम दे दूंगा, मेरा बैकुंठपुरा उसको दे दूंगा। तो इस प्रकार ये विभीषण जी की कथा है। एक बार ये जब राम और रावण युद्ध चल रहा था, तो विभीषण जी भगवान के पास खड़े थे, उनको एडवाइस कर रहे थे कि ये ऐसा है, ये अस्त्र ऐसा है, ये अब इसका उपयोग करेगा, ये करेगा, वह करेगा। तो रावण देखा कि मेरा पूरा भेद ये बता रहा है विभीषण, तो रावण ने एक ब्रह्मास्त्र लिया विभीषण पे चलाने के लिए। वह ब्रह्मास्त्र ऐसा था, यदि किसी मनुष्य पर वह अस्त्र लग जाएगा तो निश्चित वह मर जाएगा। तो उसने अस्त्र चलाया, तो चलाया तो तुरंत विभीषण ने पाछे ठेला, भगवान राम ने विभीषण को झट से अपने पीछे कर लिया और उस वस्त्र को स्वयं अपनी छाती पे ले लिया। अब भगवान तो मनुष्य है नहीं कि उस अस्त्र से मर जाते, पर एक लीला किए कि वे मूर्छित हो गए। इस प्रकार वे विभीषण की रक्षा किए, भगवान ने विभीषण की रक्षा की। रावण वह सामान्य लोगों को यह शिक्षा देता था कि देखो मैं तुम्हारा हितैषी हूं और तुम लोग ये पुण्य मुण्य के चक्कर में मत पड़ो, पाप जितना पाना पाप करो। तो बोले पाप करने से भी मैं तुमको स्वर्ग दिला दूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि एक सीढ़ी लगा दूंगा वहां तक और तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। नॉर्मली स्वर्ग मिलता है जब हम पुण्य करते हैं तब, लेकिन वह उल्टा बोलता है कि तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम पाप करो, मैं एक सीढ़ी लगा दूंगा और तुम वहां पे चले जाओगे। ये इसको इसको इतना अभिमान था। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं, इनको अपनी भौतिक वस्तुओं से इतना अभिमान रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वे अपने अपने यानों को भेज रहे हैं, कभी चंद्र में, कभी बृहस्पति में, कभी शुक्र में, कभी मार्स में, मंगल में, लेकिन ये कुछ भी सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि जैसा रावण ने किया, वे यहां उसमें कहते हैं, जैसा रावण ने किया कि मैं एक सीढ़ी लगा दूंगा वहां तक जाने के लिए, तो उसकी क्या सीढ़ी सफल हुई? बोले इसी प्रकार इन लोगों की सफलता नहीं होने वाली है। एक बार रावण को किसी ने कहा, कह रहे तू सीता को चुरा के लाया है, पर सीता माँ तो तुमको कुछ भी तुम्हारे फेवर में नहीं आ रही है, तो तू एक काम कर, तू रावण का भेष बना ले, राम का भेष बना ले। तू बना ही सकता है, तुम बनाया था एक बार सन्यासी का भेष बनाया था जब सीता को चुराने गया था, तो तुम बना सकता है, तुम परम योगी है, तो तू राम का भेष बना ले, राम के जैसा पोशाक पहन ले, जब ऐसा करेगा तब सीता माता को तुम आराम से फुसला सकता है कि मैं राम हूं, राम बन के जाना उनके पास। तो रावण बोलता हाँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करता हूं। तो वह राम बन गया, राम का सकल सूरत बना दिया, अब वह राम के कपड़े पहनना चालू किया। जैसे ही वह राम का वस्त्र पहनना चालू किया तो उसको सीता के अंदर मातृभाव उदित हो गया। तो बोलता अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा गंदा व्यवहार है, ये तो बड़ा गंदा कपड़ा है, बड़ा गंदा भेष है, मैं इसको प्राप्त नहीं करूंगा, कहां मैं सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं और कहां ये मैं मातृभाव मेरा उदित हो गया। तो वह तो रावण का, फिर उन्होंने सब त्याग दिया, रावण का रावण ही रह गया। तो इसी प्रकार जैसे कोई चाहे हज में जाए चाहे जिधर जाए, लेकिन हज में जाके भी जब वापिस आता है तो काजी का काजी, हज में गया तो काजी हो गया, लेकिन काजी का जब वापिस आया तो फिर पाजी का पाजी ही रह गया। तो रावण पाजी का पाजी ही रह गया। इस प्रकार का ये रावण था, बड़ा विद्वान था, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी उसमें कृष्ण की भक्ति नहीं होने से, राम की भक्ति नहीं होने से, और वह तो असुर बन गया था, ब्राह्मण था वह, असुर बन गया। तो अंतिम श्लोक है इसका, कि पुलहस्य गतिर्भार्या त्रिंसुत सती सुतान, जो ये आज का श्लोक है, कर्म श्रेष्ठम मरियांसम सहिष्णुम च महामते। पुलहस पुलहस्य से जो गति के पति थे उनसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम है कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। और ये महामते और सहिष्णु ये सब साधु पुत्र थे, परम साधु थे और अच्छे ये परसंत पुत्र थे। तो यहीं पे आज ये विराम देंगे। कल से श्रीमद् भागवत से यहाँ पे चालू होने वाला है 7 दिन के लिए। तो किसी को सब लोग आप यहाँ पे पधारिएगा। टाइमिंग है 4 से 7:30 बजे तक का, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। प्रकरण है कृष्ण जन्म, 10th स्कंद का पहला 2, 3, 4, 5 अध्याय की कथा होगी यहाँ पे। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। कृष्ण भक्ति में यदि आप थोड़े से भी डाउन हैं तो एकदम एलिवेट हो जाएंगे, ऐसी ही सुंदर कथा है। तो आप सब लोगों को विनंती है कि आप सब लोग कल से जरूर पधारिएगा और टाइम से आइएगा। ये मत देखिए कि गर्मी है, सर्दी है, ये तो सहिष्णु होना ही चाहिए भक्तों को, तभी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु बोलिए। नहीं, रमाकांत जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।